Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तीन रात्रियों तक वो यम के महल में रहे, यम के भवन में रहे। आप कहां रहते हैं ये बड़ी बात नहीं, आप कैसे रहते हैं ये बड़ी बात है। वो रहे ये बात उनको नहीं कहना है शास्त्र को, वो कैसे रहे, तीन दिन तक रहे वो कैसे रहे। बोले अनशनन, वो बिना खाए। और यह अनशनन शब्द का अर्थ केवल बिना खाए ऐसा अर्थ मत करना, बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए, माने जो भी वहां पर ऐश्वर्य था, जो भी सुख भोग की सामग्री थी, उसका बिना भोग किए रहे वो, ये इंद्रिय संयम है। और वो तत्क्षण उनका इतना विवेक जगा हुआ कि वो सोचते हैं कि यहां पर अब यम का भवन कोई सामान्य भवन तो नहीं होगा, क्योंकि यम तो यम है, वहां बहुत ऐश्वर्य का वर्णन है। आप श्रवण करते हैं कि यम बड़े भयंकर, लेकिन जहां गए हैं वो यम ब्रह्मज्ञानी है और बड़े दयालु ऐश्वर्यशाली हैं, सारी चीजें हैं वहां पर। उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए, मांगो धन ऐश्वर्य। वो उनके पास यदि कुछ भी न होता तो कहां से देते हो, रथ हाथी घोड़े गिनाया उन्होंने, ये जो चाहिए आप ले लो, वहां सब कुछ है, नाचना गाना भी है, आमोद प्रमोद के सारे साधन उपलब्ध हैं, बहुत अच्छे अच्छे भोजन है, पेय पदार्थ हैं, सुगंधी द्रव्य हैं। लेकिन अनशनन, आज वहां बालक नचिकेता सोच रहे थे कि मेरा दान हो चुका है, और दान हो चुका अब इस जीवन पर मेरा अधिकार नहीं है। दान दी हुई वस्तु पर दाता का अधिकार नहीं रहता है, स्वत्व उस पर नहीं होता है। आपने एक बार दान कर दिया, कर दिया, अब आप इतना भी नहीं कह सकते कि ये मेरी है। आपको इतना भी याद है कि ये मैंने दान किया है, ये वस्तु मेरी है, समझ लो कि उस दान में भी कुछ कमी रह गई है, उस दान में भी अभी प्रलोभन है, आप उस दान से भी अभी जुड़े हुए हैं, आपने पूर्ण त्याग अभी नहीं किया है, अभी संस्कार अवशेष है। इसलिए आप कभी सुनते हैं ना गुप्त दान, बोलते कि नहीं कि आप दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले, एक बहुत अच्छी उक्ति है। माने पूर्ण रूप से स्वत्व का परित्याग कर देना, इसी का नाम वास्तविक दान है। बालक नचिकेता सोचते हैं मेरे पिता ने मेरे जीवन का दान कर दिया है, मृत्यु को, अब इस पर मेरा अधिकार नहीं, अब भोजन करूं तो इसका उपयोग करना है, कान से सुनूं तो इसका उपयोग करना, आमोद प्रमोद के साधनों का उपयोग कर लूं तो जीवन का उपयोग करना, यहां तक कि सोना भी जीवन का उपयोग करना है। वो ये कितना बड़ा इंद्रिय संयम आप कल्पना कर सकते हैं, बालक नचिकेता का कितना बड़ा इंद्रिय संयम है। ये श्रद्धाजन्य, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये तत्पर संयतेन्द्रिय, तीनों सूत्र बराबर बालक नचिकेता के जीवन में घटते हैं। और तीन दिन के बाद आए यम, उन्हें मालूम पड़ा ये बालक कोई पृथ्वी मंडल से आया हुआ है और तीन दिन से भूखा प्यासा, और उन्होंने उस बहुत तत्परता से कहा अपने पत्नी को, हर वैवस्वतोदकम, आओ ले आओ, आहर जल ले आओ, और इसकी हम पूजा कर लेते क्योंकि अतिथि ब्राह्मण और बिना खाए पे हमारे द्वार पर तीन दिन तक रहा। अब हमारा कर्तव्य क्या है, हम तो गृहस्थाश्रम के व्यक्ति हैं और एक अतिथि भूखा रहे हमारे द्वार पर, ये बहुत बड़ा अपराध है। अतिथि देवो भव, गृहस्थाश्रम के व्यक्ति के लिए अतिथि देवता की तरह होता है, और ये तो भूखा प्यासा अतिथि सम्मान नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये कहीं अग्नि हमारे यमलोक को नष्ट न करे इसके पहले इसको शीतल करो, शीतल करो। जल लेके उन्होंने पैर धोया, पूजा की, सम्मानजनक स्थान दिया, सारी घटना उन्होंने सुनी और देखा, आहा आज ऐसा श्रेष्ठतम एक व्यक्ति आया पृथ्वी का और ऐसा अद्भुत बालक कुमार अवस्था में। तम कुमार संतम, बिल्कुल कुमार अवस्था में थे। उन्होंने कहा कि बेटे अब तुमको तो जाना पड़ेगा, हम तुमको यहां नहीं रख सकते हैं। क्यों? भले ही तुम्हारे पिता ने तुमको दान कर दिया है लेकिन मैं मृत्यु हूं और उसके जीवन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं जिसके यहां लाने का समय नहीं हुआ हो। मरने का समय यदि नहीं हुआ है तो आप कितना भी कोशिश करेंगे तो आप कैसे मरेंगे? माने यम के भी हाथ में नहीं है कि आपके मृत्यु का समय न हो और उसको स्वीकार कर ले। उन्होंने कहा कि मैं तुमको भेज दूंगा, तुम अपने पिता के यहां जाओगे लेकिन जाने के पहले मैं तुमको तीन वर दे दू। तीन क्यों? तीन रात्रियां तुमने यहां निवास किया। और ये रात्रि शब्द जो है ना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें सविस्तर उस समय में कह चुका हूं। राति सुखम राति दुखम इति रात्रि, रात्रि जो है ना यही हमें सुख देती है। ये रात्रि शब्द का ही अर्थ होता है, राति ददाति सुखम इति रात्रि। आप दिन में सुखी रहते हैं कि रात्रि में सुखी रहते हैं? आपको आराम कब मिलता है? दिन में आराम मिलता है कि रात में आराम मिलता है? दिन में कहां आराम है, दुनिया की सारी झंझटें। आज जैसे रात हो जाती है तो आपको आराम मिल जाता है, इसलिए उसको रात्रि बोलते हैं। लेकिन आप रात्रि में खतरे में होते हैं कि दिन में खतरे में होते हैं? आप रात्रि में खतरे में होते हैं, आप दिन में दरवाजा कुंडी लगे कि न लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप सो रहे हैं तो आप ज्यादा चौकीदार की जरूरत नहीं समझते हैं दिन में, लेकिन रात हो जाए तो आप फिर क्या देखेंगे? दरवाजा बंद करेंगे अच्छी तरह से, चौकीदार को आवाज लगा देंगे, भैया जग रहे हो? क्यों? रात्रि है, राति दुखम इति रात्रि ही, जो दुख देती हैं, जो भय प्रदान करती हैं, इसलिए उसको रात्रि बोलते हैं। इसलिए दिन की अपेक्षा रात महत्वपूर्ण है। मैंने किसी को आप दिन में प्रश्रय दो ये बड़ी बात नहीं है, रात में प्रश्रय दो ये बड़ी बात है। आप कभी ये नहीं बोलते कि दिन में आदमी भूखा रहा, आपको ज्यादा कष्ट होता है अरे रात में भूखा रहा है। आज यही बात है, आचार्य यम के सामने यही प्रश्न है, हो रात के समय हमारे यहां तीन रात्रियां रहा, इसलिए रातियां गिनाई उन्होंने, दिन नहीं गिनाए। उन्होंने कहा कि तीन वर मैं आपको दे देता हूं और बहुत सारी चीजें दे दूंगा, बहुत सारी चीजें दे भी दिया है, उल्लेख है बहुत सारी चीजें दे दी। अब बालक नचिकेता को नचिकेता सामान्य वही बालक थोड़ी रहा, अब उन्हें तो श्रेष्ठतम व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी मिले इन्हें और सारी चीजें मिल चुकी हैं इन्हें। अब इस पृथ्वी लोक का आचार्य बनेगा ये और ये महान यज्ञ का कर्ता, वैदिक कर्म का प्रस्तोता बनेगा आचार्य। ये कोई आप ये सामान्य घटना मत समझना है। आज नचिकेता का उल्लेख एक छोटी सी आख्यायिका में है कठोपनिषद में, इतने मात्र से आप ये मत सोचना कि इतना ही है। आज वो पृथ्वी मंडल पर संपूर्ण यज्ञ विज्ञान इनको दे करके भेजने वाले हैं। बहुत सारी चीजें दे दी और उन्होंने कहा कि तुम अब अपने मन से तीन बार मांग लो। अब इनके मांगने का जो क्रम है ना, ये क्रम और समय बहुत अद्भुत है। ये समय भी हमारे जीवन को निर्मित करता है, हमारे जीवन का संदेश देता है समय। आप किस समय क्या कर रहे हैं? बालक नचिकेता के जीवन में इसका बहुत बहुत संतुलन है, समय और मांगने का क्रम। बालक नचिकेता को पहले दूसरे तीसरे वर को मांगने के लिए जब बोला तो उन्होंने पहले वर में क्या मांगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण। बालक नचिकेता ने पहले वर को अपने पिता के लिए रखा, अपने परिवार को सामने रखा, पारिवारिक दायित्व को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले वर में अपने पिता के लिए मांगा, शांतः सुमनसा यथा स्यात् वीतमन्युः गौतमो माभिप्रेत। मेरे पिताजी शांत हो जाए। बोले शांत से भी काम नहीं चलता है, वो शांति खो जाएगी। यदि मन आपका अच्छा नहीं है और आपको शांति भी मिल जाए तो शांति खो जाएगी। थोड़े समय के लिए शांति होगी और फिर जो मन है कुमन वो आपके मन को फिर अशांत कर देगा। इसलिए इन्होंने मांगा जो है ना, बोले शांत, बोले शांत हो जाए मेरे पिताजी का मन। लेकिन शांत हो जाए तो क्या भरोसा उसका? तो बोले सुमनसा, बोले वो सुमन हो जाए, सुमन सुमन हा? क्योंकि आपके मन में यदि सुविचार ना हो, आपके मन में सुविचार ही मन का सौम्यत्व है। मन की जो सुमनता है वो मन के कारण नहीं है, वो सुविचारों के कारण है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का मन सुमन हो जाए हा? और जब मन जब सुमन होगा तो फिर आपको शांति को पैदा करना पड़ेगा कि अपने आप शांति होगी। मन सुमन हो गया है, अब आपको मन को शांत करने के लिए अलग से उपायों की जरूरत नहीं है। आपको नींद क्यों नहीं आती है? आपको भी ध्यान देना, आप सो नहीं पा रहे हैं तो उस समय आपके मन में कोई दुष्ट विचार पैदा हुए होंगे, कोई टेंशन पैदा हुआ होगा, कोई विक्षेप पैदा हुआ होगा और उस समय आप कोशिश करते होंगे कि मैं सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं, आप सो नहीं पा रहे हैं। इसलिए सोने के पहले आप बहुत अच्छी कोई पुस्तक पढ़ो, आप भगवद गीता पढ़ो, आप विवेकानंद जी को पढ़ो, पूज्य महाराज श्री को पढ़ो, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, आप आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपका मन सुमन होगा, आपका मन विक्षेप रहित होगा। और आप टीवी देखो या इधर उधर की चीजें या राग द्वेष वाली चीजों को याद करो पढ़ो और आपका मन विचलित कर देगा वो, और आप उस समय कितना भी सोने की कोशिश करोगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी। आपको नींद आती है सत्संग में, क्यों आती मालूम है? आप सत्संग में बैठने के बाद आपको नींद क्यों आती है? आपका मन सुमन हो गया है। आप सत्संग में आए, इतने दिव्य विचारों के लोग और ये अनुष्ठान है 7:30 से 8:30, कुछ भी हो जाए सत्संग चलता है, ये समय ये स्थान ये पवित्रता और लोगों की दिव्यता आपके मन को प्रभावित करती है। आप जाने अनजाने आपको पता भी नहीं और आपका मन सुमन हो गया, उस देश ने उस काल ने आपके मन को पकड़ लिया और अब आपका मन उतना विक्षिप्त नहीं है जितना घर में था, उतना नहीं रहा और उस समय शांत होने लगे धीरे धीरे धीरे, और उस समय आपका मन नींद में चला गया। आपका मन जब शांत होता है ना, विक्षेप रहित होता है, तो वहां दो रास्ते खुलते हैं, एक तमोगुण का और दूसरा सत्वगुण का। आप जैसे निर्विचार होते हैं, जैसे जैसे आप निर्विचार होने लगते हैं वैसे आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं, एक सत्वगुण का। आपके सत्वगुण का रास्ता खुला, अलर्ट होंगे आप, बहुत शांति से आप सुनेंगे, सत्वगुण बढ़ेगा। और थोड़ी असावधानी रही तो दूसरा रास्ता तमोगुण का वो खुलेगा, लेकिन उसका मूल दोनों के प्रति एक ही है, निर्विचारिता विक्षेप शून्यता। अब आपके विक्षोपों के ऊपर नियंत्रण हो गया, थोड़े समय के लिए देश और काल की परिस्थिति ने आपके मन को सुमन बना दिया। अब जो आदमी घर में भी नहीं सो सकता है वो यहां के सो जाता है, आराम से सो जाता है। अपने वृंदावन अखंडानंद आश्रम में एक व्यक्ति आता है, डेली का वो प्रतिदिन नियमित श्रोता है, जैसे प्रवचन में आते हैं मंगलाचरण भी पूरा नहीं कर पाते हम, और वो सो जाता है और वो ऐसा सोता है कि उसकी खराटे हमको सुनाई देती है और सबको मालूम है सोता है, अब कब तक कौन जगाएगा, अब जगाना भी बंद, अब मालूम है कि सो गया है। अब उनकी पत्नी बोलती है इनको घर में नींद नहीं आती, और पता नहीं क्या होता है कि यहां सो जाते हैं। अब वहां पर बैठते ही वहां की जो आध्यात्मिकता, उनकी मन को छू गई, उन्होंने उस आध्यात्मिकता को पकड़ लिया, मन थोड़े समय के लिए सुमन हो गया, विक्षेप रहित हो गया और उस समय नींद में चला जाता है आदमी। इसीलिए सुमन हो जाए वही नींद के लिए श्रेष्ठ, शांति के लिए श्रेष्ठ अवसर है, अन्य किसी उपाय की जरूरत नहीं। इसलिए नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता का मन सुमन हो जाए, और उनको यह भी तो मालूम था, बेटे ने कहा कसमे माम दासी सी, तो उस बात को हल्के ढंग से ले लेते हैं, और बालक नचिकेता को समझा भी तो देते, बेटा ठीक कह रहे हो, मैं ये गाय दान नहीं दूंगा, मैं अच्छी अच्छी गायों को दान दूंगा। लेकिन क्रोध किया था उन्होंने, शायद लगता है कि ज्यादा क्रोधी होंगे। अपने बच्चों को जिन्होंने कहा कि मृत्यु को दान देता हूं, तो इसी से सिद्ध होता है कि थोड़े वो क्रोधी भी रहे होंगे, और क्रोधी आदमी को नींद कहां से आएगी, क्योंकि क्रोध ही अपने आप में अनिष्ट का मूल है। इसलिए इन्होंने कहा सुमना सुमनो यथास्या, और यथा शब्द का भी प्रयोग किया, बोले उपाय मन सुमन हो जाए, लेकिन बोले यथास्यात यथास्यात, अरे भाई जैसे बना लो। हाँ बोलते हैं ना कि भैया ये कैसे भी करो लेकिन ये फाइल निपटाओ, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। सामने वाला बोलता है कि भैया ये नहीं होगा, अरे बोले नहीं कैसे भी कर लो लेकिन ये जैसे तैसे इसको, बोले यथास्यात। ये संस्कृत का भाव बड़ा, संस्कृत भाषा बड़ी अद्भुत है, आप मूल श्लोकों को पकड़ते हैं बहुत अद्भुत भाव निकलते हैं। बोले मेरे पिताजी का मन सुमन हो यथास्यात, माने जैसे जिन उपायों से हो आपकी कृपा, भगवत कृपा कैसे भी हो लेकिन यथास्यात सुमनो यथास्यात। और सुमन हो गए वीतमन्यु, ये वही बात, क्रोध से रहित हो जाए। और एक बहुत अद्भुत बात बोली उन्होंने, कितने भविष्य की बात को भी समझने वाले हैं। उन्होंने बोल तो दिया था कि मैं आपको घर पिताजी के पास भेज दूंगा, खुश हो गए होते हाँ, और बोलते ठीक है आप हमको भेज रहे हैं तो हम माता पिता के पास चले जाएंगे। लेकिन उनके दिमाग में एक बात आई कि मैं तो मर चुका हूं, मृतवीर त्वाम ददामिति, और संकल्प शक्ति के द्वारा वो तो शरीर छोड़ दिए हैं, और शरीर तो पड़ा हुआ पिता के सामने, और मुझे लगता है कि आज तीसरा दिन है, वित्तमन्यु तीन रात्रियां पूरी हुई, चौथी रात आने वाली है, और वो जो शरीर पड़ा हुआ बालक नचिकेता का अब होगा कि नहीं, वहां कि उसका अंत्येष्ट संस्कार हो गया होगा। आज तीन रात्रियां बीत चुकी हैं, आज चौथी रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं, और बालक नचिकेता क्या अब वहां होंगे, क्या उनका शरीर वहां होगा? अब वो तो अंत्येष्ट संस्कार हो गया है, और बालक नचिकेता को आचार्य यम कह रहे कि तुमको मैं भेजूंगा। अब बालक नचिकेता सोचने लगे कि इन्होंने मुझे भेज भी दिया तो मेरे पिताजी मुझे पहचानेंगे कि नहीं। मान लो कि किसी आदमी की अपने अंत्येष्ट संस्कार करके घर लाके बैठ गए हैं, हाँ, और जैसे आप घर में बैठे और उधर से आपके पास फोन आया, बोले मैं आ रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? मत आओ। तीन दिन बीते, अंत्येष्ट संस्कार किसी का हो गया है, और वो आपके घर में यदि आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप स्वागत करोगे, नहीं करोगे आप, उस समय पहचानोगे नहीं कि वही है, आप बोलोगे तो भूत हैं, प्रेत हैं। आज बालक नचिकेता का कितना गहरा तार्किक दिमाग है, आज बालक नचिकेता सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे पहचानेंगे कि नहीं, वही मेरा बेटा है, और वही मेरा बेटा वापस आया, वो पहचानेंगे कि नहीं, तो ऐसा ना हो कि भूत प्रेत समझ के मेरी उपेक्षा कर दे, फिर आपके द्वारा भेजने का फायदा क्या होगा। फिर आर्य श्लोक में उन्होंने बोला त्वत् प्रसृष्टम, बोले तुम्हारे द्वारा भेजा गया मैं, माम अभिवदेत, वो मेरे से बात करे, माम अभिवदेत, इसके दोनों अर्थ हैं, और प्रतीत, उनको मालूम पड़ जाए कि यही मेरा बेटा है, ये भूत प्रेत नहीं है, ये वही मेरा बेटा है, ये भी काम करो। उनके दिमाग में ये भी भर देना कि मैं वही हूं और वही यम के द्वारा भेजा गया हूं। मरने के बाद भी अपने संकल्प शक्ति के द्वारा नया शरीर देकर और उन्हीं उसी को वापस भेज दिया। ये पहले वर में उन्होंने बहुत कुछ मांग लिया, पिता की शांति मांग ली, सुमन मांगा, क्रोधादि विकारों पर विजय मांगी और उसके साथ उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मुझे पहचान ले। और वास्तविकता तो यही है, पहचानेंगी तभी तो शांत संकल्प सुमनसा ये आपका वर चरितार्थ होगा। आज यदि वहां गया और वो भूत प्रेत मुझे समझ ले तो फिर उनका मन अशांत होगा ना, फिर वो सोचेंगे कि ये तो मर गया और ये भूत प्रेत बन गया। बोले नहीं, आपके वर के अंदर है शांत सुमनसा यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टम माम अभिवतेत प्रतीत एतत्त्रयानाम प्रथमम वरणम। ये मैं तीन वरों में पहला वर में मांगता हूं या अपने परिवार के लिए। प्रथम जो कर्तव्य बालक नचिकेता ने निभाया वो अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि परिवार हमारे जीवन का मूल है। माता पिता जो भी अपने परिवार के लोग हैं, पहला कर्तव्य उन्होंने अपने पिता के लिए, और भी उन्होंने बोला यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत है ना। ये बालक ने श्री पिता की बात सुनी, ओ हो बड़ा बुद्धिमान बालक, ये तो मेरे भी दिमाग में नहीं आई थी। आज मानो आचार्य यम कहने लगे कि अरे ये तो मेरे भी दिमाग में बात नहीं थी कि तुमको मैं तुम्हारे पिताजी के पास भेजूंगा तो वो तुमको पहचानेंगे कि नहीं, ये मेरे भी दिमाग में बात नहीं थी। इसलिए बोले पुरस्तात भविता प्रतीत, पुरस्तात भविता, ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया। पुरस्तात जैसे पहले, जैसे पहले वैसे ही भविता आगे भी, भेजने के बाद भी जैसे पहले तुमको समझते थे वैसे ही बाद में भी तुमको पहचानेंगे। और ये भविता शब्द का प्रयोग किया है, सुदूर भविष्य के अर्थ में है। ये जो भविष्य भविता शब्द है ना, भविता भवितार भवितार ऐसे रूप बनते हैं इसके, माने बहुत लंबे समय तक, माने अंतिम समय तक तुमको यही समझेंगे कि ये मेरा ही बेटा है। माने बीच में भी कहीं उनको संदेह पैदा नहीं होगा, मतलब कहीं बीच में भी कभी कालांतर में आप भी तो पहचान लिया, अचानक बाद में दिमाग में आ गया अरे ये तो मर गया था ये कहां से। बोले नहीं नहीं भविता, और बहुत सारे बीच में भी और भी उन्होंने दिए। उसके बाद फिर बीच वाला जो वर है उन्होंने समाज के लिए, और तीसरे वर के रूप में आत्मज्ञान मांगा। ये 12वां श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है, हम लोग क्रमशः इसको चलेंगे। इसका तीसरा वर और तीसरे वर के बाद जो तत्व ज्ञान, दूसरे वर के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, यहां एक दो श्लोक में पूरी की है। अब आप लोग सीधे बैठ जाएं और हम लोग दो माला जप करेंगे प्रतिदिन। प्रवचन के बाद हम लोग थोड़ा घर में जाके हम तो जप नहीं कर पाएंगे है ना, तो यही थोड़ा सा साधनात्मक रूप मैं आगे बोलूंगा, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे अपने मन को समाहित करके। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ॐ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमः शिवाय। 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 ॐ 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।